بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप शार्पे में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज रविवार है, दे की 19, जमादिसानी की 6 और जनवरी की 9 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद अनमोल बातें, और उसके बाद राजनीतिक चर्चा। उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कुरान ईश्वरीय चमत्कार, और अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। आप सैयद मीसम और मरियम महरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के समीकरण हमेशा गलत बैठते हैं। जनरल सुलेमानी की शहादत इसका एक उदाहरण है। ईरान ने जनरल सुलेमानी की हत्या में शामिल 51 अमरीकी अधिकारियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। भारत कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चपेट में आ गया है। ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान में सैनिकों को भेजने का मतलब उन्हें मौत के मुंह में भेजना है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका आतंकवाद विरोधी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को ईरान के लिए एक बड़े झटके के रूप में देख रहा था, लेकिन ईरानी जनता ने इसे अपने धार्मिक उत्साह के साथ एक अवसर में बदल दिया। 1978 में पवित्र शहर कुम में पहलवी शासन के खिलाफ शुरू होने वाले नागरिकों के ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर अपने भाषण में वरिष्ठ नेता ने कहा, अमेरिका अभी तक गलत समीकरणों पर काम कर रहा है और इसका उदाहरण शहीद सुलेमानी की शहादत है। उन्होंने सोचा था कि इस शहीद को रास्ते से हटाकर ईरानी राष्ट्र के महान आंदोलन को रोक देंगे, लेकिन हमने इस साल उनकी शहादत की दूसरी बरसी पर एक विशाल आंदोलन देखा। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने सवाल किया, इसके पीछे कौन था? ये काम ईश्वर का है और उसकी शक्ति ने ही इस महान आंदोलन और श्रद्धा का निर्माण किया है। उन्होंने आगे कहा, दुश्मनों की कंप्यूटिंग प्रणाली निश्चित रूप से ढीली और खराब है, और वे इस्लामी गणतंत्र का सही आकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे गलत निर्णय लेते हैं और विफल हो जाते हैं, और वे इसके बाद भी विफल होंगे। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने कहा, इस्लामी गणतंत्र से अमेरिका की गहरी दुश्मनी का कारण ईरानी जनता का धार्मिक उत्साह है। उन्होंने ईरानी जनता से इस उत्साह को बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, विभिन्न अवसरों पर इसी धार्मिक उत्साह ने देश को बचाया है। यही धार्मिक उत्साह है जो खतरों को अवसरों में बदल देता है। इसका एक उदाहरण 8 वर्षीय थोपा गया युद्ध और रक्षा है, जिसमें युवाओं, पिताओं, माताओं, बहनों और पत्नियों के धार्मिक उत्साह ने युवाओं को मोर्चे पर जाने और इस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को जीतने के लिए प्रेरित किया। 9 जनवरी 1978 को ईरान के पवित्र शहर कुम में पहलवी शाही शासन के खिलाफ शुरू हुए जन आंदोलन ने इस्लामी क्रांति के आंदोलन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। इसने पहलवी शासन की नींव हिलाकर रख दी थी, जिसके बाद 1979 में तानाशाही का पतन हो गया और इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति सफल हुई।
इराक के वरिष्ठ सुन्नी धर्मगुरु शेख खालिद मुल्ला का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी और जनरल अबू महदी अलमोंदेस अमरीकी योजना को विफल बनाने की वजह से शहीद हो गए। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शेख खालिद मुल्ला ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अलमोंदेस की शहादत की दूसरी बरसी के अवसर पर बल दिया है कि ये दोनों शहीद अमरीकी योजना को लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट थे। अल अहद वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इराक के वरिष्ठ सुन्नी धर्मगुरु का कहना था कि विजय के कमांडर जनरल शहीद कासिम सुलेमानी और जनरल अबू महदी अलमोहंदिस को इसलिए कत्ल किया गया कि उन्होंने इराक में अमरीकी योजनाओं को विफल बनाया था। उन्होंने बल दिया कि फतह के कमांडरों ने स्पाइकर की योजना को जारी रखने को नाकाम बना दिया था, क्योंकि अमरीका हम सबकी बलि चढ़ाना चाहता था। याद रहे कि दाइश के आतंकियों ने सन 2014 में तिकरित के निकट स्थित स्पाइकर छावनी पर हमला करके 1,700 सैन्य कर्मियों का अपहरण करने के बाद उनको गोलियों से भून दिया था। दाइश ने इस जनसंहार का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें अपहृत कैडिटों को जमीन पर लिटाकर गोलियों से निशाना बनाते हुए दिखाया गया था। इराक के सुरक्षा बलों ने तिकरित की स्वतंत्रता के बाद 600 इराकी कैडिटों के शव एक सामूहिक कब्र से प्राप्त किए थे। इराकी अधिकारियों का कहना है कि दाइश के आतंकियों ने स्पाइकर छावनी में कम से कम 1700 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इराक के वरिष्ठ सुन्नी धर्मगुरु शेख खालिद अब्दुल्ला वहाब अल मुल्ला का कहना था कि क्यों हमारे बच्चों पर छापामारों के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब दाइश गुट के बारे में कहते हैं तो उसको इस्लामी सरकार कहते हैं।
IRGC की कुद्स ब्रिगेड के पूर्व कमांडर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल 51 अमरीकी अधिकारियों को ईरान ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी करके कहा कि अमरीका ने घृणित आतंकवादी कृत्य करके आतंकवाद का महामहिमंडन किया और मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। बयान में कहा गया है कि ईरान इस बात को रेखांकित करता है कि जघन्य आतंकवादी कृत्य किसी भी तरह से आतंकवाद और आतंकवादी गुटों के खिलाफ लड़ाई में जनरल सुलेमानी के मार्ग का अनुसरण करने से ईरान के दृढ़ संकल्प को कमजोर नहीं कर सकता है, और खासतौर से अमरीका समर्थित आतंकवादी गुटों के खिलाफ लड़ाई में। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2020 को अमरीकी सेना ने ट्रंप के आदेश के तहत बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जनरल सुलेमानी और इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल मोहंदिस को मिसाइल हमले में शहीद कर दिया था।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच शनिवार की शाम टेलीफोनी वार्ता हुई, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने देश में कोरोना से निपटने की ताजा स्थिति के बारे में भारतीय विदेश मंत्री के सवाल के जवाब में कहा कि ईरान कोरोना महामारी को अच्छी तरह नियंत्रित करने में कामयाब रहा है और इस समय 89% लोगों को टीका लग चुका है और लोग इस समय बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस अवसर पर पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सभी जातियों और राष्ट्रों की भागीदारी से सरकार के गठन को आवश्यक बताया। उन्होंने अफगानिस्तान को भारत की ओर से भेजी गई मानवीय सहायता का उल्लेख किया और इस मदद को पहुंचाने में ईरान के सहयोग का उल्लेख किया। इस वार्ता में वियना में ईरान के विरुद्ध प्रतिबंधों को समाप्त कराने के उद्देश्य से जारी वार्ता पर भी विचार विमर्श किया गया। ईरानी विदेश मंत्री ने वार्ता को सही दिशा की ओर अग्रसर बताया और कहा कि ईरान सद्भावना और मजबूत इरादे के साथ वार्ता में हाजिर हुआ, और अगर पश्चिमी पक्ष अपनी सद्भावना और मजबूत संकल्प का प्रदर्शन करें तो अच्छा समझौता हो सकता है। इस टेलीफोनी वार्ता में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने देश में कोरोना से निपटने के अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह टीकाकरण का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके दृष्टिगत इस वायरस में ग्रस्त होने की रफ्तार को हम लगाम लगा सकते हैं। उन्होंने निकट भविष्य में अपने ईरानी समकक्ष के भारत दौरे को दोनों देशों के बीच सहयोग के विस्तार का अच्छा मौका करार दिया।
भारत कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है और इस देश में रोजाना 1.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को भारत में 1.6 लाख से ज्यादा कोविड के नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,90,611 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 327 लोगों की मौत हो गई। इस बीच संसद भवन के 402 स्टाफ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। संसद के एक अधिकारी के मुताबिक 4 से 8 जनवरी के बीच कुल 1,409 स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों के कोरोना टेस्ट किए गए। संक्रमितों में लोकसभा के 200, राज्यसभा के 69 और संसद से जुड़े 133 कर्मचारी शामिल हैं। गौरतलब है कि जनवरी के अंत में संसद का बजट सेशन शुरू होना है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। कोर्ट के 150 स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है।
भारतीय प्रधानमंत्री एवं भाजपा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष को कथित तौर पर अपशब्द कहने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धनबाद में एक व्यक्ति की पिटाई करने, थूक कर उसे चाटने और जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री ने मामले की जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा कार्यकर्ता पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई कथित चूक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि धनबाद में भाजपा के एक मूक प्रदर्शन के दौरान वहां से गुजर रहे एक मुस्लिम व्यक्ति ने जब प्रधानमंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ कथित अपशब्दों का प्रयोग किया तो भाजपा कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने उसकी पिटाई की और मुर्गा बनाया। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता इतने पर शांत नहीं हुए और उन्होंने उस व्यक्ति से थुकवा कर चटवाया तथा जय श्री राम का नारा लगवाया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की पहचान 32 वर्षीय जीशान खान के रूप में करते हुए कहा कि हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के बाद और गिरफ्तारियां की जाएंगी।
अमरीका के विदेश मंत्री का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में पहली बार ऐसा है कि अमरीका अपने सैनिकों को लड़ने और मरने के लिए अफगानिस्तान नहीं भेज रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अब व्हाइट हाउस अमरीकी सैनिकों की तीसरी नस्ल को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए नहीं भेज रहा है। ब्लिंकन का कहना था कि अफगानिस्तान में सैनिकों को भेजने का मतलब उन्हें मौत के मुंह में भेजना था।
रूस से सहायता लेने के कारण अमेरिका ने कजाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए उन्होंने रूस से सैनिकों की सहायता मांगी है। एंटोनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इतिहास ने हमें बताया है कि जब रूसी आपके घर आते हैं तो फिर उनको वापस जाने के लिए उनकी बहुत मिन्नत की जाती है। अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि कजाकिस्तान के अधिकारी अपने देश में उत्पन्न हुई स्थिति पर नियंत्रण करने में सक्षम हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
انمول باتیں۔
دوستو، کاریکرم انمول باتیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ میں سید میسم آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں۔ آج ہم ورشٹھ نیتا کی نظر میں پیسہ جمع کرنے اور قارون کی طرح پیسوں کا بھنڈار کرنے اور سبھی کو اس بری عادت سے دور رہنے کی ورشٹھ نیتا کی سفارش پر چرچا کریں گے۔ دوستو، اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اپنے سمبودھن میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مال و دولت جمع کرنا اور قارون کی طرح دولت کے پجاری بننا بہت بری عادت ہے اور سبھی کو اس بری عادت سے دور رہنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بدھ جیویوں اور بدھیمانوں کے بارے میں، جن میں سے کچھ نے قارون سے سفارش کی تھی، آنے والی آیتوں میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے قارون سے نہیں کہا کہ جو کچھ بھی ہے یا نہیں ہے سب کچھ تیاگ دو۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے سنسادھن بناؤ۔ دنیا کا مال اور سمپتی سادھن ہے، انسان کے اونچے اور شریش استھان تک پہنچنے کا ذریعہ یا سادھن ہے، آدھیاتمک استھان تک پہنچنے کا سادھن ہے۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ آپ پیسوں سے دنیا آباد کر سکتے ہیں، انسانوں کی زندگی بچا سکتے ہیں، بھید بھاؤ کو دور کر سکتے ہیں، غریبوں اور کمزوروں کو غریبی اور کمزوری سے باہر نکال سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے لیے خرچ کرو، لیکن اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ آپ کے حصے میں کچھ بھی نہ لگے، آپ کو کچھ بھی نہ ملے۔ کیوں؟ آپ کو بھی حصہ ملنا چاہیے، اپنا حصہ استعمال کرو۔ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ یہ زندگی کا نیم ہے جو اسلام نے ہمارے لیے نردھارت کیا ہے، اس کے وپریت جو وہ مورخ انسان سمجھ رہا تھا، وہ بیوقوف اور بدھیہین قانون کہتا تھا کہ میں خود ہی اسے حاصل کرنے میں کامیاب رہا، میں نے اپنی کلا سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایشور نے سنسادھن اپلبدھ کرائے، وہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس لیے پوتر قرآن کی کچھ آیتیں اس طرح ہیں، اس طرح کی آیتیں بہت زیادہ ہیں جو زندگی کے نیم نردھارت کرتی ہیں۔ دوستو، کاریہ کا سمے سماپت ہوا، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شروط راجنیتک چرچا کے دینک کاریہ میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ اتی گرہنکاری امریکی سینکوں دوارا سمرتھت سیرین ڈیموکریٹک فورس بچوں اور یوواؤں کے ورودھ اپنی کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ ایس ڈی ایف کے تتوں نے کامسٹلی کی 16 بچی سما کدو کا اپہرن کر لیا اور 20 گزرنے کے بعد بھی اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ سما کے پریجنوں نے بچوں کے ادھیکاروں کے بارے میں کام کرنے والی انتراشٹریہ سنستھاؤں سے اس معاملے میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔
تستمر مجموعات قسد المرتبطة بالاحتلال.
فلسطینی سنگٹھنوں نے ورش 2021 میں اپنی پرترودک شکت میں وستار کر کے اسرائیل کے مقابل میں اپنی استھتی کافی مضبوط کر لی ہے. بھارت نیتت کشمیر میں گپکار الائنس نے کہا ہے کہ کشمیر میں زمین کے سمبندھ میں جو قانون بنائے گئے ہیں اور جو لوگ زمین خرید رہے ہیں, ہم ان کا آہوان کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر پنر وچار کریں. اس گٹ کا کہنا ہے کہ جو لوگ زمین خرید رہے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب جموں کشمیر میں جنتا کی سرکار آئے گی تو زمین خریدنے کے سمبندھ میں بھی قانون رد ہو جائیں گے.
جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں, جو بھی یہاں پہ پبلک حکومت آئے گی, یہ سارے جتنے بھی آپ نے یہ ایم او یوز وغیرہ سائن کیے ہیں یہ سب کینسل ہو جائے.
اتی گرہنکاری امریکی سینکوں دوارا سمرتھت سیرین ڈیموکریٹک فورس بچوں اور یوواؤں کے ورد اپنی کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. ایس ڈی ایف کے تتوں نے کامسٹلی کی 16 ورشیہ بچی سما کدو کا اپہرن کر لیا اور 20 دن گزرنے کے بعد بھی اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے. سما کے پریجنوں نے بچوں کے ادھیکاروں کے بارے میں کام کرنے والی انتراشٹریہ سنستھاؤں سے اس معاملے میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے. الیاس ایشو کی رپورٹ پیش کریں, ساتھ ہی اختر عباس.
اتی گھنکاری امریکی سینکوں دوارا سمرتھت سیرین ڈیموکریٹک فورس بچوں اور یوواؤں کے ورد اپنی کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. ایس ڈی ایف کے تتوں نے کامشلی کی 16 ورشی بچی سما کدو کا اپہرن کر لیا اور 20 دن گزرنے کے بعد بھی اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے. سما کے پریجنوں نے بچوں کے ادھیکاروں کے بارے میں کام کرنے والی انتراشٹریہ سنستھاؤں سے اس معاملے میں ہستکشیپ کرنے کی اپیل کی ہے.
لازم يكون في شيء يوقف هالظلم.
سما کی ماں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں وشیش کر ساری مانوتا کے خلاف ان اتیاچاروں کو ترنت روکنا چاہیے. ہم بچوں کے ادھیکاروں پر کام کرنے والی ساری انتراشٹریہ سنستھاؤں اور ریڈ کرسنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری مدد کرے. یوروپ اور بھومدھیہ ساگر شیتر میں سکری مانوادھیکار سنستھا کی رپورٹ کے آدھار پر, جس کا مکھیالیہ جنیوا میں ہے, امریکہ سمرتھت ایس ڈی ایف نے اپنے نینترن والے شیتروں میں اپہرنوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور اس نے حال ہی میں وبھن گاؤں شہروں اور قصبوں سے 200 سے ادھک بچوں کو اٹھایا ہے اور انہیں اپنے کیمپوں میں رکھ رکھا ہے.
تعلیمنا واستقرارنا هو.
سما کے پتا کا کہنا ہے کہ شانتی سب سے اہم بات ہے. میں ریڈ کرسنٹ, ریڈ کراس اور انیہ انتراشٹریہ سنستھاؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بیٹی بیمار ہے اور اس کی عمر کیول 16 سال ہے. وہ 2016 سے بیمار ہے, اس کو تلاش کروانے میں میری مدد کریں.
بحسب المرصد الاورومتوسطي لحقوق.
یہ ایسی حالت میں ہے کہ شیتری لوگوں کی آواز کہیں بھی نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ایس ڈی ایف کے تتو ہر پردرشن کو کچل دیتے ہیں اور ان کا دمن کر دیتے ہیں تاکہ اپنی کاروائیوں پر پردہ ڈال سکیں.
في وجهها تزايد حالات الاعتقالات.
بچوں اور نوجوانوں کی اتیاچار پورن گرفتاری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گٹ اپنے وچنوں کا الگھن کر رہا ہے اور وشو سمودائے اس سمبندھ میں پوری طرح سے چپی سادھے ہوئے ہے. سیریا سے آئی آر آئی بی کے لیے الیاس ایشو کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
فلسطینی سنگٹھنوں نے ورش 2021 میں اپنی پرترودک شکت میں وستار کر کے اسرائیل کے مقابل میں اپنی استھتی کافی مضبوط کر لی ہے. ابراہیم احمد کی رپورٹ پیش کریں، ساتھ ہی احمد عباس.
رسخت المقاومت.
فلسطینی سنگٹھنوں نے 2021 میں اپنی پرتیرودھک شکتی میں وستار کر کے اسرائیل کے مقابلے میں اپنی استھتی کافی مضبوط کر لی اور سنتولن اپنے پکش میں کر لیا.
العام 2021
حماس کے ایک کمانڈر نے کہا کہ ورش 2021 میں وشیش روپ سے قدس کی تلوار آپریشن کے بعد فلسطینی سنگٹھنوں کے پکش میں بڑے مہتوپورن بدلاؤ آئے. اس سال کے اندر فلسطینی سنگٹھنوں نے اسرائیل کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو نشانہ بنایا. قدس کی تلوار نام کا سینک آپریشن حقیقت میں قدس شہر کی رکشا کے لیے تھا. اس میں میسائلوں اور بم یکت ڈرون ویمانوں کے ذریعے حملہور زائنیوں کو نشانہ بنایا گیا. حماس نے اس سمے اعلان کیا تھا کہ قدس کی تلوار آپریشن میں ہم نے نیتن یاہو اور ان کے ہارے ہوئے کمانڈروں اور پوری اسرائیلی سینا کو اچھی طرح سبق سکھایا اور ہر دن انہیں نئے روپ سے اپمانت کر دیا.
ما ظهر من امكانات المقاومه الفلسطينيه.
فلسطینی سنگٹھنوں نے اسرائیل سے ہونے والی لڑائیوں میں اپنی جس طاقت کا پردرشن کیا وہ ان کی واستوک شکتی کا ایک چھوٹا سا بھاگ تھا. یعنی فلسطینیوں کے پاس ابھی بہت کچھ ہے جو اسرائیل کو حیرت میں ڈال دے گا. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنی حفاظت کے لیے بہت پریشان ہے اور بنکروں کا لگاتار نرمان کر رہا ہے.
احشدوا ما شئتم من قوة.
حماس کے کمانڈر نے اسرائیلیوں کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ تم جتنی چاہے تیاری کر لو، اپنی جان بچانے کے انتظام کر لو، ہم نے تمہارے لیے اچھا علاج تیار کر لیا ہے، ہم کہیں بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم نے تمہارے لیے تلوار اور گولیاں تیار کر کے رکھی ہیں. ورش 2021 کے انتم سمے میں فلسطینی سنگٹھنوں نے ویاپک استر پر سینیہ ابھیاس کیا جس میں سبھی فلسطینی سنگٹھنوں نے حصہ لیا اور پورے فلسطین کو سندیش دیا کہ وہ ہر استھتی کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اسرائیل جو بھی چاہے سازش کرے وہ مقابلہ کریں گے. غزہ سے IRIB کے لیے ابراہیم احمد کی رپورٹ.
بھارت نیتت کشمیر میں گپکار الائنس نے کہا ہے کہ کشمیر میں زمین کے سمبندھ میں جو قانون بنائے گئے ہیں اور جو لوگ زمین خرید رہے ہیں، ہم ان کا آہوان کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر پنروچار کریں. اس گٹ کا کہنا ہے کہ جو لوگ زمین خرید رہے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب جموں کشمیر میں جنتا کی سرکار آئے گی تو زمین خریدنے کے سمبندھ میں بھی قانون رد ہو جائیں گے. شنگر سے سپتے محمد حسن.
مین سٹریم گٹھوں کے گڑھ بندھن گپکار الائنس نے کہا ہے کہ کشمیر میں لینڈ کے حوالے سے جو قانون بنائے گئے ہیں اور جو زمین خرید رہے ہیں، ہم ان سے بنتی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وچاروں پر ومرش کریں. سری نگر میں مظفر شاہ جو الائنس کے پروکتا ہیں نے کہا ہے کہ میں یہ بات بل دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہاں راجیہ کا درجہ بحال ہوگا اور جو بھی نئی پرشاسن ہوگی وہ ان تمام قوانینوں کو سماپت کرے گی. اسی لیے میری ان سے بنتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز جلدی میں نہ کریں. یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام جموں کشمیر میں جو نئے قانون آئے ہیں اس کے انوسار اب یہاں پہ کوئی بھی زمین خرید سکتا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جموں کشمیر کی ترقی کے لیے ایک بڑا قدم ہے، پرنتو جتنے بھی مین سٹریم دل ہے وہ اس کا ورودھ کر رہے ہیں. مظفر شاہ نے اس اوسر پر پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
بالکل نہیں بدلا ہے، آج ہم بیوروکریٹک رول میں ہیں. ایک بہت ہی پیکولر قسم کی سچویشن جموں کشمیر میں اس وقت دیکھنے کو آ رہی ہے کہ میکسیمم جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، وہ اچھے کوالیفائڈ لوگ ہیں، مگر وہ جموں کشمیر کو جانتے ہی نہیں. یہاں پہ جو میکسیمم ہمارے سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں، آپ کے دیکھیے پولیس میں آپ کے سیکرٹری لیول کے بعد میں جو رنگ ہے اس میں امپورٹنٹ جو محکمے ان نے رکھے ہوئے ہیں، ریونیو کے پوسٹ، جو ڈیل کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، یہاں کے ہمارے ڈویژنل کمشنر، جموں کے ڈویژنل کمشنر، ہر طرف سے ڈی سیز بہت کم ہیں جو کیا آپ کہہ سکتے ہیں جموں اور کشمیر کے باشندے ہیں. اسی لیے پبلک کا جو کنیکٹ ہے سرکار سے وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، اٹ از ٹوٹلی گون. اور اس کی ابھی مجھے لگتا ہے 2022 میں یہ شاید زیادہ سنگین ہو جائے گا، اور شکنجہ کشنے کی کوششیں کریں گے. چونکہ جب چونکہ اب یہ آپ کے یہ جو لینڈ کا جو معاملہ ہے، جو ابھی ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، اس کی جو یہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں، ایم او یو 18,000 crore پہ سائن کیے ہمارے لینڈ پہ، ہاؤ بھائی. اور میں اچھا ہے میں اتنا ہی کہوں گا، جو بھی جن لوگوں نے بھی ایم او یو سائن کیے ہیں، بھائی لوگوں سوچ سمجھ کے چلیے، کیونکہ یہ سارے ایم او یو جو بھی جتنے بھی آپ کر رہے ہیں، لینڈ کی سیل ہو رہی ہے، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو دیا جا رہا ہے، جو بھی یہاں پہ پبلک حکومت آئے گی اور صحیح ایک نمائندگی یہاں کا عوام اس بارے میں دے گا، یہ سارے جتنے بھی آپ نے یہ ایم او یوز وغیرہ سائن کیے ہیں یہ سب کینسل ہو جائیں گے، یاد رکھیے میری بات. سو ڈونٹ ٹیک دیٹ رسک پروفیشنلی. تو جب میں کارپوریٹ ورلڈ کو بھی یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آپ الیگل یہ لینڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، دس ول ناٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم، دا ٹیسٹ آف لا، آپ کو یہ واپس کرنا پڑے گا اور واپس یہاں سے جانا.
اس بیچ جموں کشمیر میں باری ہمپات کے کارن سامانی جن جیون آج دوسرے دیوس بھی است ویست رہا، پرنتو آج ہوائی سمپرک بحال ہوا اور سری نگر کے ایئرپورٹ سے کئی پروازوں نے اڑان بھری، پرنتو اب بھی سڑکوں پر برف بھاری سنکھیا میں ہے اور مشینری کام کر رہی ہے. پرشاسن کا کہنا ہے انہوں نے پاور کو ریسٹور کیا ہے اور جو بھی ضروری سامان ہے انہیں وہ فوری طور پر بحال کرنے کے لیے کاریہ کر رہے ہیں. اس بیچ جموں کشمیر پرشاسن نے لوگوں سے بنتی کی ہے کہ کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وہ پروٹوکالز پر عمل کریں. انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی دیوس سے جو اچھال آیا ہے اس سے یہ سنکیت ملے ہیں کہ ایک بار پھر کورونا وائرس پھیل رہا ہے، لہذا ہماری لوگوں سے بنتی ہے کہ وہ ہیلتھ ایڈوائزری پر مکمل طور پر عمل کریں. سبت محمد حسن، ریڈیو تہران، سرین.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروع ہماری سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل، پر اس سے پہلے آپ سنیے آتما کو شانتی پردان کرنے والا ساپتاہک کاریکرم قرآن ایشوریہ چمتکار.
قرآن ایشوریہ چمتکار.
پریہ شروتاؤں، کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار کی ایک انیک کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے. آئیے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 35 کی تلاوت سنیں.
ما كان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون.
ईश्वर के लिए उचित नहीं है कि वो किसी को अपनी संतान बनाए कि वो पवित्र व आवश्यकता मुक्त है. जब वो किसी बात का निर्णय करता है तो जैसे ही वो उससे कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है.
پچھلے کاریکرم میں ہم نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے جھولے میں ہی اپنی ماتا کی پوترتا کی گواہی دی اور سوئم کو ایشور کا ایک داس بتایا جو ایک دن سنسار میں آیا ہے اور ایک دن اس سنسار سے چلا جائے گا.
یہ آیت کہتی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو ایشور کا پتر سمجھا اور انہیں منوش کے استر سے اوپر اٹھا دیا، انہوں نے انوچت بات کہی ہے، کیونکہ ایشور اس بات سے کہیں پوتر ہے کہ اس کی کوئی سنتان ہو. یہ وشے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کا جنم بنا پتا کے ہوا ہے اس ارتھ میں نہیں ہے کہ وہ ایشور کے پتر ہیں، کیونکہ یدی ایشور چاہے تو وہ بنا ماتا پتا کے بھی منشیہ کو پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنم اسی پرکار ہوا تھا. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم ایشور کے پتر ہیں، جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بھی ایشور کے بندوں میں سے ایک ہیں.
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ ایشور سرو سکشم ہیں اور سرشٹی کے لیے اسے پراکرتک کارکوں کی آوشکتا نہیں ہوتی.
आसमानी किताब वालों को उनकी भ्रष्ट आस्थाओं के संबंध में सही मार्ग दिखाने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में तटस्थ रहना उचित नहीं है।
सृष्टि की सभी वस्तुओं के साथ ईश्वर का संबंध पिता व संतान का नहीं बल्कि रचयिता व रचना का संबंध है।
आइए अब सूरह मरियम के आयत नंबर 36 की तिलावत सुने।
और निश्चित रूप से ईश्वर मेरा और तुम्हारा पालनहार है, तो उसी की उपासना करो कि यही सीधा मार्ग है।
ये आयत हजरत ईसा मसीह की जबान से है, जो अपना परिचय इस प्रकार कराते हैं कि मैं ईश्वर का दास हूँ और मेरा तथा तुम्हारा पालनहार एक ही है कि जो अल्लाह है। अतः तुम लोग भी मेरी ही भांति केवल उसी की उपासना करो और किसी को उसका समकक्ष न ठहराओ। यदि तुम ऐसा करोगे तो सीधे मार्ग पर रहोगे।
ईसाई से हमने सीखा कि तीन ईश्वरों के संबंध में ईसाइयों की आस्था ईश्वर की उपासना के सीधे मार्ग से पथ भ्रष्टता है।
उपासना केवल ईश्वर की होनी चाहिए जो सृष्टि का रचयिता व पालनहार है, और दूसरों की उपासना नहीं की जा सकती, चाहे वे ईश्वर के पैगंबर ही क्यों ना हों।
या मुस्लिम हादा कुरानी कद जाअ बिनूरिर रहमानी बिल खैर व फैदिल ईमानी यदउ लिसलाहिल अकवानी। या मुस्लिम हादा कुरानी कद जाअ बिनूरिर रहमानी बिल खैर व फैदिल ईमानी يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان।
आइए अब सूरह मरियम की आयत नंबर 37 और 38 की तिलावत सुने।
اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين।
तो उनके कुछ गुटों ने आपस में मतभेद किया, तो एक बड़े दिन जब उन्हें उपस्थित होना होगा, बड़ा बुरा अंत होगा उन लोगों का जिन्होंने ईश्वर का इनकार किया। कितने बड़े सुनने वाले और कितने बड़े देखने वाले होंगे जिस दिन वे हमारे सामने आएंगे, किंतु आज के दिन अत्याचारी खुली हुई पथ भ्रष्टता में है।
यह आयतें हज़रत ईसा मसीह के बारे में ईसाइयों के विभिन्न गुटों व समुदायों के बीच मतभेद का वर्णन करते हुए कहती हैं कि इन लोगों के बीच गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया और इनमें से प्रत्येक ने उनके बारे में एक अलग बात कही, किंतु प्रलय में जब हर धर्म के पर्दे हट जाएंगे तो उनकी आंखें और कान सत्य को देखें और सुनेंगे और फिर वे सत्य को स्वीकार कर लेंगे।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वरीय धर्मों की एक बड़ी मुसीबत धार्मिक मतभेद हैं, जो पैगंबरों की शिक्षाओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हैं।
हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रलय के न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व इसी संसार में खुली आंखों व कानों से सत्य के मार्ग का चयन करें और उस मार्ग पर अडिग रहें।
आइए अब सूरह मरियम की आयत नंबर 39 और 40 की तिलावत सुने।
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ।
और हे पैगंबर, उन्हें पछतावे के दिन से डराइए कि जिस दिन सभी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी, जबकि वे निश्चेतना में होंगे और ईमान नहीं लाएंगे। धरती और जो कुछ उसमें है उसके केवल हम ही उत्तराधिकारी होंगे और वे हमारी ही ओर लौटाए जाएंगे।
सूरह मरियम के इस भाग के अंत में कि जो हजरत ईसा मसीह तथा उनके बारे में पाए जाने वाली गलत आस्थाओं के बारे में था, ये आयतें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि वे आसमानी धर्म के अनुयायियों को सचेत कर दें कि प्रलय का दिन پچھتاوے کا دن ہوگا، کیونکہ اس دن واپسی کا کوئی مارگ نہیں ہے اور اس دن ایشور کا فیصلہ بھی آ چکا ہوگا۔ اتہ اچت ہے کہ آج ہی نشچیتنا سے نکل آئیں اور ایشور پر ایمان لے آئیں تتھا یہ جان لیں کہ وہ اس سنسار سے جانے والے ہیں، کیول ایشور کا استتو باقی رہنے والا ہے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ اس سنسار میں ہماری نشچیتنا پرلے میں ہمارے پچھتاوے کا کارن بنے گی۔
اس سنسار کا دھن دولت سمپتی اور ستا نشور ہے، اتہ ان وستوں کو ہماری نشچیتنا کا کارن نہیں بننا چاہیے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔ آج کل
دوستوں، کارکرم آج کل کو لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں سواتی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کریں۔ آج ہم 2021 میں فارس کھاڑی سہیوگ پریشد کی پرمکھ گھٹناؤں کا الیکھ کریں گے۔
دوستو، वर्ष 2021 में फारस खाड़ी सहयोग परिषद के तीन सदस्यों सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और बहरीन तथा मिस्र ने कतर के साथ तनाव को कम करने का प्रयास किया था। 5 जनवरी वर्ष 2021 को सऊदी अरब के अल उला शहर में फारस खाड़ी सहयोग परिषद का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य कतर की घेराबंदी को खत्म करना और परिषद के सदस्यों के बीच शांति और दोस्ती को बहाल करना था। 5 जून वर्ष 2017 को कतर और 4 अरब देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात, बहरीन और मिस्र के बीच तनाव की शुरुआत हुई। कतर की विदेश नीति इस तनाव का मुख्य कारण थी। ان 4 अरब देशों ने कतर के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते तोड़कर उसका परिवेशन कर लिया और अपनी सभी सीमाओं को दोहा के लिए बंद कर दिया।
इन देशों ने कतर के सामने कुछ शर्तें रखी, जैसे कि अल जजीरा टीवी चैनल को बंद करना या उसकी गतिविधियों को सीमित करना, हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरान से रिश्ते तोड़ना। लेकिन दोहा ने अपने सहयोगी अरब देशों की 13 शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है और वह अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। अब जबकि 4 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है, सऊदी अरब ने कतर के लिए अपनी सीमाएं खोलने और रिश्तों की बहाली का ऐलान किया है, जबकि कतर ने उसकी कोई भी शर्त नहीं मानी है, उसके सामने आत्मसमर्पण भी नहीं किया है।
अल उसा सम्मेलन में बहरीन के नरेश हमद बिन ईसा अल खलीफा और अरब इमारात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने शिरकत नहीं की थी। इसकी एक वजह यह थी कि ये देश कतर के साथ तनाव कम करने के सऊदी अरब के कदम से खुश नहीं थे और उनका मानना था कि रियाज ने उनसे सलाह किए बिना ही कतर के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का फैसला लिया है। फारस खाड़ी सहयोग परिषद का 42वां सम्मेलन 14 दिसंबर 2021 को रियाज में हुआ था। इस परिषद के सदस्य देशों के बीच संबंधों की बहाली के बाद ये परिषद का पहला सम्मेलन था। इसके बावजूद इस सम्मेलन में ओमान, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने शिरकत नहीं की। इससे पता चलता है कि सभी सदस्यों के लिए सहयोग परिषद का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है और सदस्य देशों के बीच समन्वय की कमी है।
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने काफी प्रयास किया कि सहयोग परिषद के सभी नेता सम्मेलन में भाग लें ताकि इस परिषद और अरब जगत में वह अपनी स्थिति को मजबूत कर सके और सऊदी शाही ताज पर अपना दावा मजबूत कर सके, लेकिन वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। फारस खाड़ी सहयोग परिषद के भीतर इस खींचतान के बीच इस परिषद के सदस्य देशों में भी कई घटनाक्रम घटे हैं। इसमें से एक यूएई के विदेशी नीति में होने वाला परिवर्तन है। यूएई पिछले एक दशक के दौरान सीरिया के बड़े विरोधी देशों में से एक था, लेकिन नवंबर में उसके विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने दमिश्क का दौरा किया ताकि दोनों देशों के बीच रिश्तों को बहाल किया जा सके। यह कोई अचानक किया गया दौरा नहीं था, क्योंकि इमारात ने 2018 में दमिश्क में अपना दूतावास फिर से खोल दिया था और दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे से मुलाकात भी की थी।
इसके अलावा सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने वर्ष 2021 में अरब इमारात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के साथ दो बार टेलीफोन पर बात की थी। सबसे पहले मार्च 2021 में दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस और युद्धग्रस्त अरब देशों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बातचीत हुई थी। उसके बाद अक्टूबर 2021 में दोनों देशों के नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत की थी। मोहम्मद बिन जायद ने नवंबर 2021 में तुर्की की यात्रा की और तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के साथ मुलाकात की। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान अबू धाबी और अंकारा के बीच काफी तनाव था, खास तौर पर तुर्क सरकार द्वारा मुस्लिम ब्रदरहुड और कतर का समर्थन इस तनाव का मुख्य कारण था। संयुक्त अरब इमारात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद ने भी दिसंबर 2021 में ईरान की यात्रा की और तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति सहित अन्य उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इस यात्रा के बाद इसराइल की मीडिया ने अरब इमारात के ईरान से निकट हो जाने पर चिंताएं भी जाहिर की।
इन घटनाक्रमों के बाद इसराइली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेत ने 13 दिसंबर को अबू धाबी का दौरा किया। अबू धाबी में बेनेत ने इमारत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। सितंबर 2020 में अबू धाबी और तेल अवीव ने संबंधों को सामान्य बनाने का समझौता किया। बेनेत की यूएई की यात्रा में संबंधों के सामान्यकरण की ही एक कड़ी थी। इससे पहले जून में इसराइली विदेश मंत्री याइर लैपिड ने भी यूएई का दौरा किया था। बेनेत की यूएई की यात्रा किसी भी ज़ायनी प्रधानमंत्री की पहली यूएई की यात्रा थी।
ऐसा लगता है कि वर्ष 2021 में अरब इमारात ने राजनयिक यात्राओं के माध्यम से अपनी विदेश नीति में गतिशीलता को दिखाने की कोशिश की थी और कहीं न कहीं उसका ये मानना था कि इन मुलाकातों से उसके क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। वास्तव में 2021 में अरब इमारात ने अपनी तनावपूर्ण विदेश नीति को काफी हद तक नियंत्रित करने और आर्थिक और राजनयिक संबंधों के माध्यम से इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। इस तरह से संयुक्त अरब इमारात की विदेश नीति में होने वाले बदलाव में सऊदी अरब के साथ प्रतिस्पर्धा भी देखी जा सकती है।
फारस खाड़ी सहयोग परिषद के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सऊदी अरब ने पिछले वर्षों की तुलना में 2021 में कुछ अलग तरह की परिस्थितियों का सामना किया है। सऊदी अरब एक ओर यमन की दलदल में फंसा हुआ है तो दूसरी ओर उसने उससे क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रतिद्वंदियों खासकर ईरान के लिए काफी हद तक मैदान छोड़ दिया। इस बीच जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद मानवाधिकार जैसे मुद्दों को लेकर सऊदी अरब और विशेष तौर पर मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव बढ़ गया। बाइडेन ने औपचारिक रूप से ऐलान किया कि वे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं करेंगे। हां, अमेरिकी विदेश मंत्री सऊदी अरब के विदेश मंत्री के रूप में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर सकते हैं। 2021 में यह मुलाकात भी नहीं हो सकी।
यही वजह है कि वर्ष 2021 में सऊदी अरब ने न केवल कतर के साथ तनाव कम करने का प्रयास किया बल्कि ईरान के साथ भी अपने रिश्तों की बहाली के लिए वार्ता शुरू की। हालांकि वर्ष 2021 के आखिर तक इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सका। वर्ष 2021 में मोहम्मद बिन सलमान ने किसी भी एशियाई या पश्चिमी देश की यात्रा नहीं की, लेकिन आखिरी महीने में उन्होंने फारस खाड़ी के 5 सदस्य देशों ओमान, बहरैन, कतर, इमारात और कुवैत की यात्राएं की। ये यात्राएं रियाज में फारस खाड़ी सहयोग परिषद की 42वीं बैठक से पहले हुई थी।
एक अहम बिंदु यह है कि 5 अरब देशों की मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा, यूएई के नेताओं की सीरिया और तुर्की की यात्राओं के बाद और यूएई के राष्ट्रीय सलाहकार की तेहरान की यात्रा के साथ हुई। इससे दोनों देशों के बीच क्षेत्र में जारी प्रतिस्पर्धा का पता चलता है। अल खलीज अल जदीद वेबसाइट ने इस संदर्भ में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था, फारस खाड़ी सहयोग परिषद पर सऊदी अरब की पकड़ ढीली पड़ गई है और इमारात अब उसका मुख्य प्रतिद्वंदी बन चुका है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अमेरिका के भरोसेमंद है और अब वह सऊदी अरब की विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं।
संयुक्त अरब इमारात ने 2017 में आतंकवाद के समर्थन और क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जैसे आरोप लगाकर कतर की घेराबंदी के लिए मोहम्मद बिन सलमान को राजी किया था। सऊदी अरब ने बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ये घेराबंदी खत्म कर दी। वैसे भी कतर विरोधी अरब देशों को इस घेराबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ था।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दें।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.
Thank you.